الحمد لله والصلاة على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي نظرات. سوالات بہت جمع ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ گفتگو کروں، میں انہیں سوالات کو ڈسپوز آف کرنا چاہوں گا تاکہ انتظار نہ کرنا پڑے آپ لوگوں کو. پہلا سوال تو ایک صاحب نے کیا ہے جس کا جواب میں بارہا دے چکا کہ اپنے مرشد صاحب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مرید ان سے رابطہ کس طرح قائم رکھے. میں اپنے مرشد صاحب سے رابطہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہت آسان ہے. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے دو رکعت نفل پڑھیے اور آنکھیں بند کر کے جانواز پہ ہی بیٹھے رہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے مرشد صاحب کی طرف متوجہ ہوئیے اور ان سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال ان سے پوچھ لیں. امید تو ہے کہ اسی وقت یا تو ذہن میں جواب آ جائے گا آپ کے، اگر یہ نہ ہوا تو خواب میں آپ کو آ کے آپ کے مرشد بتا دیں گے. لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے سوال اور ہماری دعائیں عام طور پر دنیاوی معاملات سے متعلق ہوتی ہیں کہ صاحب فلاں دکاندار آٹا مہنگا دے رہا ہے، دعا کیجئے وہ سستا دینا شروع کر دے. جیسے میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مرشد کا یہ استعمال صحیح نہیں ہے کہ اس سے دنیاوی دعائیں کروائی جائیں. اس کے اندر تو بڑی سیدھی سامنے کی ایک بات ہے کہ جس چیز کا رب تعالی نے اتنی حقارت سے ذکر کیا، جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری جس کے گوشت گل سڑ گیا ہے، اس کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں میں سے ایک بال کے برابر اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ دنیا کی مثال دی ہے، دنیاوی مال و زر. اور پھر ایسی چیز جو رب تعالی نے اپنے مقرب پیغمبروں کو وافر نہیں دی، اگرچہ آپ کے تصرف میں تھیں یہ چیزیں جتنے بھی پیغمبر، اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے. تو تصرف ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ ہماری ایک ہلکی سی خواہش پر مال دنیا وافر ہو جائے گا، کسی پیغمبر نے مانگا نہیں ہے اور نہ رب نے انہیں وافر عطا کیا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیاوی مال و زر کی حقیقت اصل میں کیا ہے. تو ایسی حقیر چیز کے لیے اگر ہم اپنے مرشد کے پاس جائیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک لانگ رینج ہیوی گن کے گولے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کریں ہم. وہ گولا جو بہت ایکسپینسو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور مکھی بھی نہیں مرے گی. تو مرشد صاحب سے دنیاوی مال و زر کے بارے میں گفتگو سے اجتنا بھی کرنا چاہیے. یہ چیز میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ اس راہ میں شروع میں بہت تکلیفیں آتی ہیں، ہر ہر طریقے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس کو ہر طرح کا رگڑا ملتا ہے. जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जहां तकलीफ ना आए इंसान को। तो रब ताला कुछ इस राह पर कामयाबी देने से पहले कुछ इस तरह से इंसान को उसकी रबिंग करता है कि जैसे चक्की के दो पार्टों में आया हुआ इंसान की उसकी जुबान एक फुट बाहर मुंह से लटकने लगती है, इस तरह से गुजरता है इन तकलीफ से। लेकिन जब इंसान की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर जो इनामात मिलते हैं रब ताला की तरफ से, उन इनामात को एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं देखने के बाद नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपीरियंस करने के बाद ये दुनिया वाकई ही हेच दिखाई देती है। उस वक्त समझ में आती है कि ये जितने भी औलिया अकराम गुजरे हैं, पैगंबर गुजरे हैं, इन्होंने दुनियावी लालच के मुकाबले पे, इस दुनिया के हसूल के मुकाबले पे इन तकालीफ को क्यों तरजीह दी थी जिनसे वो सब गुजरे। तो मुर्शद साहब के बारे में जरा सा ये ख्याल रखिए कि हम दुनियावी चीजों के लिए उनसे रजू न कर रहे हों। रब ताला का वादा है, वो पहली बात तो यह है कि रब नाम ही ऐसी हस्ती का है जो पालने वाला है। तो पालने में सिर्फ रोटी नहीं आती बल्कि इंसानी जिंदगी की तमाम जरूरियात का पूरा होना लफ्ज पालने में कवर हो जाता है। उसने अपने आप को रज्जाक कहा, ये उसका दावा भी है, वादा भी है। रिस्क देने वाला तो वो है। तो जिसने अपने आप को रब कह दिया है कि मैं तुम्हारा रब हूं, और फिर हमारे ईमान का यह हिस्सा है कि रब का कोई वादा झूठा नहीं है, वो अपने वादे का बड़ा सच्चा है। तो जब उसने वादा कर लिया है कि वो हमें पालेगा तो फिक्र किस बात की है। बेफिक्र रहिए कि मेरा रब मौजूद है, मेरा रब पालने वाला है, पालेगा मुझे, और वो जरूर पालता है। तो अपने मुर्शद साहब से वो चीज हासिल करने की कोशिश करें जिस चीज ने आपके मुर्शद साहब को मुर्शद बनाया था, उस मकाम पर ले गया वो, और वो इल्म है। मैंने यही गालिबन एक किस्सा किसी जमाने में ऐसे सुनाया था कि एक साहब, उन्हें बहुत शौक था कि मैं इस राह पर चलूं कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए, मुझे अल्लाह की दोस्ती हासिल हो जाए। तो एक साहब के पास चले गए जो मर्द कामिल थे, वहां जाके बैत कर ली, बैठ गए, उनकी तरबियत होती रही। वो जब 30-35 साल गुजर गए और मुर्शद ने महसूस किया कि अब इस मकाम पर आ गए हैं कि अगर इन्हें इल्म मिले तो ये संभाल लेंगे, तो उनके मुर्शद साहब ने उन्हें हुक्म दिया कि शहर के बाहर जो जंगल है वहां चले जाएं और ये वजीफा वहां पढ़ें जाके। वो वजीफा मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाती, हर ऐसी बात बताता हूं तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती कि हर आदमी कहता है वो वजीफा बताओ पहले। वो सूरह अखलास का वर्द था। तो साथ ये तलकीन कर दी कि जंगल के दरमियान में जाके बैठना ताकि आने जाने वालों की वजह से तुम्हारी तवज्जो बटे नहीं। तो 40 दिन का ये दौर है, हर रोज تم نے اتنا یہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، 40 دن میں یہ دور مکمل ہو جائے گا، وہ دور کبیر تھا اس کا۔ تو پھر جب تم واپس آنے لگو گے تو جنگل سے جو ہی باہر آؤ گے ایک شخص تمہیں ملے گا اور وہ تم سے یہ پوچھے گا کہ کیا چاہتے ہو، تو تم کسی دنیاوی ضرورت سے مغلوب ہو کے اس سے دنیا کا نہ کہہ دینا، وہ چاہے تمہیں کتنی ہی لالچ کیوں نہ دے ایک بات پر ڈٹے رہنا کہ مجھے علم چاہیے۔ مرشد کے حکم کے مطابق وہ صاحب چلے گئے اور جا کے جنگل کے عین درمیان میں بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جو اپنے ساتھ وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کے گئے تھے وہ جواب دے گئیں اور ان کی حالت پتلی ہونے لگی۔ 40 دن کسی طرح پورے کیے تو لڑکھڑاتے ہوئے یہ واپس آ رہے تھے، تو جنگل سے جو ہی باہر نکلے تو مرشد کے کہنے کے مطابق ایک صاحب سے وہاں ملاقات ہو گئی اور ان صاحب نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کر دوں۔ تو ان صاحب کو اپنے مرشد کی بات یاد آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف علم دے دو مجھے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنی حالت تو دیکھو، بھوک پیاس سے کیا حال ہے، تم سے بات ہوتی نہیں ہے، زبان اتنی خشک ہو گئی ہے، تو تم کوئی کام کی چیز مانگو، علم سے کیا لوگے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا علم سے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف علم دے دو۔ تو جب اصرار انہوں نے کیا کہ مجھے صرف علم چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا، تم لے لو، لیکن اس سے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ تو علم دے دیا۔ اب یہ صاحب اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اپنے شہر کی طرف آ رہے تھے، تو شام ہو گئی، تو اس زمانے کے دستور کے مطابق جو پہلا گاؤں ان کو نظر آیا شام ہوتے ہی، اس میں داخل ہوئے اور پہلے گھر کے دروازے پہ نوک کیا، میں مسافر ہوں، مجھے رات گزارنا ہے۔ تو ایک صاحب باہر آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے گاؤں کا مہمان خانہ علیحدہ ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، آئیے۔ تو وہ صاحب انہیں مہمان خانے میں لے گئے، انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ رات کو یہ عبادت اپنی کر رہے تھے تو آدھی رات کے بعد انہیں رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر میں جب برداشت نہیں ہوا تو دروازہ کھولا، دیکھا کہ باہر لوگ آ جا رہے ہیں، تو ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو گیا۔ تو میں کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار جو ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کافی دیر سے بیمار تھا، تو اب وہ حالت نزاع میں ہے۔ تو انہوں نے ذرا سی توجہ کی اور کشف میں دیکھا، کہنے لگے کہ دیکھیے، آپ کے ہر گھر کے باہر اس شکل کی ایک جڑی بوٹی اگی ہوئی ہے، اس کے پتے توڑ لو اور انگلیوں میں مسل کے اس کا رس اس بچے کے منہ میں ٹپکا دو، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان صاحب نے جا کے اپنے سردار سے کہا، سردار نے سوچا کہ بچہ تو ہاتھ سے جا ہی رہا ہے، تو اسے آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے وہ رس اس کے منہ میں ٹپکایا تو بچہ صبح تک کافی بہتر ہو گیا تھا۔ تو سردار آیا ان صاحب کے پاس اور آ کے انہیں کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میرے بچے کی جان بچ گئی آپ کے نسخے سے، اب آپ میرے ذاتی مہمان ہیں، آپ یہاں کچھ دن رکیں گے۔ یہ ٹھہر گئے، یہ رکے ہوئے تھے، تو ایک دن پتہ لگا کہ جہاں یہ ٹھہرے ہیں ان کے دشمن قبیلے نے ان پہ حملہ کر دیا، وہ آ رہے ہیں، تو ان کے قبیلے جہاں جن کے مہمان تھے اس قبیلے کے لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ तो ये उस मकान की छत पर चढ़कर नजारा करने लगे लड़ाई का, जिसमें ये ठहरे हुए थे उस मकान की छत पे। इन्होंने महसूस किया कि जिनके ये मेहमान हैं वो कुछ कमजोर पड़ रहे हैं और नजर यूं आ रहा है कि शायद वो हार जाएंगे ये लड़ाई। तो इन्होंने अपने इल्म से गौर किया और मैसेज भेजा कि ये मनूवर कर लें, इससे दुश्मन पिट जाएगा। तो सरदार चूंकि इनका मुतकिद हुआ हुआ था, उसने वो मनूवर की और लड़ाई जीत गए। गांव वाले फतेह के नारे लगाते वापस आ गए। तो रात को जब फतेह का जश्न हुआ तो इनको भी दावत दी गई, तो ये सरदार ने इनको अपने साथ बैठाया। और जश्न के बाद सरदार ने एक ऐलान किया कि भाइयों, ये जो हमारे मेहमान थे ये कोई साहिब अक्ल दानिश हैं, और मैं ये समझता हूं कि जो इंसान इतना दानिश्वर है, हुकूमत उसका हक है, मेरा नहीं। तो मैं अपने इस मेहमान की फेवर में स्टेप डाउन हो रहा हूं और आज से ये हमारे सरदार होंगे। तो इनको उस कबीले की सरदारी मिल गई। तो इन्होंने उस वक्त रियलाइज किया कि मेरे मुर्शद ने मुझे ये जो हुक्म दिया था कि सिर्फ इल्म मांगना और कुछ नहीं, तो इल्म भी मिल गया और इल्म हासिल होने के नतीजे में मुझे दुनियावी अरूज भी हासिल हो गया। तो जब हम दुनिया को एक तरफ डाल के अपने मुर्शद से सिर्फ इल्म की तलब रखते हैं, तो इल्म जब मिलता है तो फिर शुरू की तकालीफ तो होती हैं, वो 5-7 साल इंतहाई तकलीफ के होते हैं, जो जब आदमी उससे गुजर जाता है तो फिर अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह, यह हालात मेरे दुश्मन को भी ना दिखाना कभी, वो ऐसे शदीद होते हैं। लेकिन फिर इल्म मिलने के बाद दुनियावी अरूज भी हासिल होता है, दुनियावी आसाइशें इंसान के कदमों में ढेर होती हैं। तो आप मुर्शद साहब से दुनिया का ताल्लुक न रखिए कि मैं दुनिया मांगूं, उनसे आप इल्म का ताल्लुक रखिए। इल्म हासिल होगा तो आप खुद मुर्शद के मकाम पर जा पहुंचेंगे और फिर सभी कुछ आपका होगा। इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि जिन अहबाब की तालीम और फैज का सिलसिला अभी मुकम्मल न हुआ हो, मुर्शद साहब के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद वो क्या तरीका इख्तियार करेंगे। एक बहुत सिंपल और सीधी सी बात है, मुर्शद वही होते हैं जो मर्द कामिल हों। आपके मुर्शद आपको ज्यादा पढ़ने को कभी नहीं देंगे, ये याद रखिए। ज्यादा पढ़ने को आदमी उस वक्त देता है, अगर आपके मुर्शद भी अगर दे दें आपको, तो आपको इस बात पे ज़हनी तौर पे ठटक जाना चाहिए कि क्या हुआ, मुर्शद ने मुझे अपने आप से दूर क्यों किया। जब मुर्शद आपको ज्यादा पढ़ने को दे दे तो समझ जाइए कि उन्होंने आपको चक्की पीसने पे लगा दिया है कि चक्की पीसते रहो, बैठे पढ़ते रहो जाओ। ये उसी वक्त होगा जब मुर्शद अपने से दूर कर ले आपको, तो बहुत कुछ पढ़ने को दे देगा, वरना 1-2 चीजें देगा पढ़ने को, मैक्सिमम 3 दे देंगे। वो जो एक चीज देते हैं वो पहली बार पढ़ने को, असल गेम वही है सारी। वह जब हम जाते हैं अपने मुर्शद साहब के पास तो हमारे मुर्शद हमें तोलते हैं, और ये देखते हैं कि हमारे अंदर कहां कहां क्या क्या खराबी और खामी मौजूद है। तो वो पढ़ने को वो चीज देंगे जिसके पढ़ने से रफ्ता रफ्ता ही वो तमाम खामियां हमारे अंदर से दूर हो जाएं। तो आप उसको पढ़िए, रफ्ता रफ्ता आप खुद बहुत तब्दील होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं तब्दील होता गया। और फिर एक और इस राह के अंदर मैं तो उसको प्रॉब्लम ही कहूंगा, वो ये है कि जब इंसान अपने मुर्शिद की दी हुई तालीम पर चलता रहता है तो उसकी आदत और उसका हुलिया, उसका रहन सहन मुर्शिद जैसा ही होता चला जाता। जिन लोगों की तरबियत जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब ने की थी, आप देखिए कि वो फकीरी में भी बादशाह हैं, उनका रख रखाव वैसा ही है जैसे मैंने आपसे एक बार अर्ज किया था यहां कि जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब बहुत ही खुश लिबास, उस जमाने में एक अशरफी जो सोने का सिक्का पर यार्ड कपड़ा पहनते थे और एक बार जो कपड़ा पहना फिर दोबारा नहीं पहना, तो उनकी शाहाना जिंदगी थी। तो उनकी जो उनके हाथ से तरबियत याफ्ता है उनकी अपनी जिंदगी रफ्तार रफ्तार वैसी हो जाएगी। तो मुर्शिद तो आपकी जिंदगी पर, यहां मैंने लफ्ज आप इस्तेमाल इसलिए किया कि मैं उस जिम्मे में नहीं आता कि शायद मेरी खाल बहुत मोटी थी, मेरे ऊपर कोई असर हुआ नहीं किसी चीज का। तो आपकी जिंदगी नमूना बनती जाएगी अपने मुर्शिद का, तरबियत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो पढ़ते जाइए। ये एक राज की बात बता रहा हूं कि मुर्शिद जो पहली बार आपको चीज देंगे पढ़ने को, असल गेम वही होती है। बाद में जो कुछ देते हैं वो आपकी मुख्तलिफ बातों से, आपकी मुख्तलिफ दुआओं को सुन के मजबूर होके देते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ये तुम्हारा ये काम हो जाएगा। पहली पढ़ाई इसे नहीं देते, ओके ये पढ़ो तुम ठीक हो जाओगे, मंजिल पे जा पहुंचोगे। बाद की पढ़ाइयां आपकी जरूरत के तहत हैं। इनका तीसरा सवाल है कि अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान पर अमल करें जिंदगी और आखिरत समर जाएगी, लेकिन ये अमल कैसे किया जाए, यानी कुरान में हिदायत या इंस्ट्रक्शन का हिस्सा कदर मुख्तसर है, बाकी तो वाकयात बयान किए गए हैं। जो कुरान पाक में वाकयात बयान किए गए हैं वो इंसान की इबरत के लिए हैं या उसको इंस्पायर करने के लिए, दो तरह के वाकयात हैं। कुछ किस्से तो वो बयान किए गए हैं जिनसे इंस्पायर हो इंसान, और ज्यादा हिस्सा वो है जिससे इबरत हासिल करे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा अंजाम यही होगा जो पहले गुजरे हुए लोगों का हुआ। तो वो भी सुधारने के लिए हैं, उससे तालीम मिलती है। लेकिन हमेशा जैसे मैं यहां अर्ज किया करता हूं कि जब हम मुश्किल चीज को पहले पकड़ेंगे, अगर क्लास फाइव का फिजिक्स का स्टूडेंट्स एमएससी फिजिक्स की किताब को उठा के पढ़ने लगेगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन मिलेगा उसे। लेकिन अगर वो क्लास फाइव में है तो क्लास फाइव के मुताबिक फिजिक्स की किताब पढ़े, जो जो ऊपर की क्लासों में जाता रहे उसी स्टैंडर्ड की किताब पढ़े फिजिक्स की, फिजिक्स समझ आती जाएगी, हत्ता के जब वो एमएससी में पहुंचेगा तो उसको एमएससी के लेवल की फिजिक्स की किताब समझ आएगी अच्छी तरह। हमारे पास एक बहुत ही सादा सीधा नुस्खा मौजूद है, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा, जिसको उर्फ आम में हम सुन्नत कहते हैं। अगर हमने अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी है, उस रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में जिंदगी हम गुजार लें तो 100% ऐन कुरान के मुताबिक हो जाएगी। तो ये आसान तरीन हल है, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी आपको। ये चौथा सवाल है कि अक्सर घरों में काम के लिए गैर मुस्लिम मेड्स होती हैं जो बर्तन भी धोती हैं, क्या उनके ये काम बर्तन धोने करवाना ठीक है पाकी और नापाकी के कॉन्टेक्स्ट में? हमारे अंदर असल में शिद्दत है, और अगर मैं आपसे जान की अमान पाऊं तो ये अर्ज कर दूं कि हम अपने अलावा किसी को कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। आप ये क्यों भूल गए, बमे मेरे मैं भी भूला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम खास एक यहूदी लड़का था, और जब वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए और उसके माथे पे हाथ रख के उसका हाथ थाम के उसकी आयादत की। मैं नहीं समझता कि मुझे और आपको अल्लाह मुआफ फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस्लाम का ख्याल है। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त यहूदी थे और कारोबार करते थे, दुकानदारी करते थे, उनको खुली इजाजत थी, मुसलमान वहां से खरीदारी करते रहे। मदीना के इर्द गिर्द जो कबाइल बसते थे उनमें अक्सरियत यहूदियों की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआहदे किए थे और उन्हीं मुआहदों के नतीजे में तो वो कुरान पाक की आयत नाजल हुई थी, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि यहूद और निसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। मुराद ये थी कि उन पे काउंट न करना, उन पे डिपेंड कभी न करना, ये वक्त पर धोखा दे देंगे तुम्हें, वो ये वार्निंग थी। अल्लाह ताला ने अंदर की बात बता दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इन पे डिपेंड न किया जाए, इन पे रिलाय न किया जाए, कभी इन पे काउंट ना किया जाए, लेकिन उनसे डील करने में कोई हर्ज नहीं है। जो अहले किताब हैं उनके साथ खाना खाने की भी मान्यता नहीं इस्लाम में, हम उनके यहां खाना खा सकते हैं। किसी को हम इतना हकीर न जाने, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में तो काफिर को भी इज्जत देने का हुक्म है। अगर मुसलमान मुल्क है तो वहां जो काफिर बसते हैं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत खुद हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें उनकी हिफाजत करना है। देखिए, जो चीजें आपको किताबों में लिखी हुई कहीं नजर नहीं आती और किसी साहिब इल्म में ने अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज बता दिया है तो उसको प्लीज पब्लिकली उसकी एक्सप्लेनेशन ना पूछिए, इसलिए कि अगर उसको आया करना मकसद होता तो आपको किताबों में मिल जाता। तो ये जिन साहब ने जिस चीज के बारे में पूछा है कि दोनों का फर्क क्या है, वो किस वक्त तन्हाई में मुझसे पूछ ले, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो ऐसी चीजें पब्लिकली पूछने की नहीं है, ना जाहिर करने की होती हैं। आपने ये दोनों लफ्ज लिख तो दिए यहां कागज पे, कितने लोगों ने पढ़ा और उसके लिए अब आपके साथ क्या बीतेगी वो मैं नहीं जानता। एक और साहब का दुआ है, सवाल है, शुड वी आस्क अल्लाह सुभान व तआला टू ब्लेस अस विद रूहानियत इन दुआ। जरूर मांगिए, इसको इल्म और रूहानियत कर लीजिए बजाय रूहानियत के, ये इकट्ठा कर दें उसे। और ये दुआ मांगिए कि या परवरदिगार या मालिकुल कुल, मुझे इल्म और रूहानियत में आला मकाम अता फरमा दे। ये दुआ मांगिए। इनका अगला सवाल है कि इन टुडेज लाइफ ए पर्सन इज वेरी ऑक्यूपाइड इन अर्निंग ए लिविंग फॉर हिज फैमिली विद ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ ए पर्सन इज looking for a teacher murshid for guidance, what practical steps should he take other than dua? How many murids do you have? Ab us Danishwar ka naam mujhe yaad nahi aa raha, angrez galman europe se taluq tha uska, usne ek baat ye kahi thi कि जो शख्स अपनी मसरूफियात या वक्त की कमी का की शिकायत करता है, समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं करता। मसरूफियात में भी हमेशा कुछ न कुछ फारे वक्त निकाला जा सकता है, तो आप तलाश कीजिए। सिर्फ इसमें एक मैं जरूर अर्ज कर दूंगा कि किसी भी शख्स को अपना मुर्शिद मानने से पहले, उसके हाथ पर बैत करने से पहले, आप वहां जाते रहिए, करीब से स्टडी कीजिए कि ऐसे साहब के रवैये जिंदगी के बारे में क्या हैं, खास तौर पर जब उन पर कोई मुश्किल आती है या उसको औलाद के जरिए आजमाया जाता है तो कैसे बिहेव करता है इंसान। तो वहां अगर आप ये पाले उसको कि वो सुन्नत के मुताबिक ही बिहेव करता है, उसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है, तो फिर आप उसके हाथ पे बैत कर लें। क्योंकि माँ बाप के बारे में तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वहां हम तकदीर के तहत एक घराने में पैदा हुए, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो मियाँ बीवी हमारे पेरेंट्स हैं, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमें ये कहा जाए कि तुम ऐसे माँ बाप के घर क्यों पैदा हुए। लेकिन मुर्शद बाय चॉइस है, पेरेंट्स बाय चॉइस नहीं है, तो वहां हमारी जिम्मेदारी है। तो खूब जांच फटक करके, नाप तोल करके, फिर हम किसी साहब के हाथ पे बैठो, वो बैठ फिर अल्लाह के फजलो करम से एक लंबा अरसा चलती है। और ये जो इनके सवाल का एक दूसरा हिस्सा है कि हाउ मेनी मुरीद डू यू हैव, तो साहब बात ये है कि मुरीद तो उसके होते हैं जो खुद किसी मकाम पे बैठा हो। मैं तो खुद ही मुरीद बनने के लायक नहीं हूं, तो किसी को क्या मुरीद करूंगा। मैं तो किसी नेक और पढ़े लिखे आदमी के पास चला जाऊं तो वो उठा देगा फौरन मुझे कि मेरी महफिल को खराब ना करो, चलो तुम जैसा फासिक व फाजर आदमी उसका यहां कोई गुजर नहीं। तो भाई मेरे मुरीद कहां से होंगे। ये इनका तीसरा सवाल ये है कि इस रूहानियत ओनली फॉर द चोजन फ्यू, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि रूहानियत है क्या, इसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं जो इंसानी हद तक मुमकिन है, तो उस बंदगी के नतीजे में रब हमसे राजी होता है। और जब रब हमसे राजी होता है तो हमें वो इल्म से नवाजता है। जब हमें रब ताला इल्म से नवाज देता है तो हमें वो अक्लो फहम और फरासत अता होती है जो मोमिन की निगाह से डरने को जहां कहा गया है। और वही सारी कैफियत वो रूहानियत है। ये मुख्तसर इसको अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए, क्योंकि रूहानियत है सच तो कोई चीज नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी रूह से है। हर वो चीज जिससे हमारी रूह लतीफ हो और उसकी परवाज बुलंद हो वो रूहानियत है। वो जो बुलंदी अता हो रही है इंसान की रूह की परवाज को, वही रूहानियत है। तो वो आखिरी चीज है, वो अज खुद आएगी। लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से मकामात से गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हम बंदगी तो इख्तियार कर पाए। रब ताला की बंदगी ही इख्तियार हमसे नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कहा कि जिस इंसानी हद तक मुमकिन है, कोताहियां रह जाएंगी बहसियत इंसान के, वो अल्लाह मुआफ फरमाने वाला है। और उसके लिए हमें हर दुआ में रब ताला से माफी मांगनी चाहिए। तो वो बंदगी पूरी एफर्ट करके हम जब उस मकाम पर आए बंदगी के, तो फिर इल्म अता हो जाएगा। ये रूहानियत जो हम मांगते हैं, इसमें हमारा जो गुस्सा जो है जलाल, ये गुस्सा जहर है। जिस तरह से कहा जाता है कि हसद नेकियों को खा जाता है, ये गुस्सा रूहानियत को खा जाएगा। गुस्से से बचिए। हसद यह हमें कहीं जाने ही नहीं देगा, एक कदम नहीं उठाने देगा आगे हमें। इस हसद से बचे हम। तकब्बुर, हिर्स, और तो और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हिर्स को फर्दर डिफाइन किया है। हिर्सुल कलाम, यह हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। हिर्सुल तुआम, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो बंदगी इख्तियार करने के लिए पहले दिल की आलाइशें तो हम दूर करें। ये दिल की आलाइशें हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं, कीना, इंतकाम, इन सब चीजों को निकालना होगा हमें, फिर हम बंदगी की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। हम ये कह पाएंगे कि अब उम्मीद है कि हम बंदगी अख्तियार कर पाएंगे रब की। बंदगी क्या है? रब ताला के अहकामात की बगैर उफ किए तामील। वो जो मैं यहां अक्सर कहता था कि जब हम किसी मुर्शिद की हाथ पे बैत करते हैं तो बैत करने की पहली शर्त यह है कि हम अपनी डिक्शनरी से, जिंदगी की डिक्शनरी से, काफ से शुरू होने वाले 5 अल्फाज निकाल दें। क्यों, कब, कैसे, किस तरह, ये जो अल्फाज हैं इनसे हम जान छुड़ा लें। मुर्शिद की महफिल में ये अल्फाज नहीं है। जो आदमी इन अल्फाज को कायम रखता है अपने अंदर मुर्शिद की महफिल में बैठ के भी, तो समझ लीजिए कि वो फिर तरक्की नहीं करेगा, वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो जब इंसान मुर्शिद की हर बात को बिला चू चरा उसकी तामील करने लगता है तो रब की बंदगी करने लगता है, क्योंकि फिर रब के किसी हुक्म के बारे में उसके जहन में कोई ख्याल नहीं आता। वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि मेरे रब का हुक्म है, मुझे ये करना है, तो यूं बंदगी अख्तियार कर लेगा। तो वो बंदगी के बाद फिर इल्म मिलेगा, और इल्म मिलने के बाद वो फहम व फरासत पैदा होगी जो एक मोमिन का तुर्रा इम्तियाज है, और उस फरासत के नतीजे में जो चीजें वकू पजीर होती हैं वो रूहानियत है। इनका अगला सवाल ये है कि इज इट रॉन्ग टू हैव डिजायर टू सी अल्लाह creation that is hidden through kashf or other means, as I am not interested in showing it off to people, rather I am curious. Hargiz nahi. Jab insaan apne rab se pyar karta hai to usse mutalliq cheezein dekhne ki khwahish guzarti hai, kudrati hamara hai wo. नेचुरल है कि जब हम रब से प्यार करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये रब की कायनात है क्या। जरूर ख्वाहिश कीजिए, बल्कि अल्लाह के बंदे, नेक बंदे जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, वो तो रब के साथ ही की ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि तू सामने आ, मैं तुझे देखना चाहता हूं। ऐसे लोग भी गुजरे हैं दुनिया में, लेकिन ये अपनी हिम्मत की बात है। तो जरूर ख्वाहिश कीजिए कि रब ताला के कारखाने कुदरत में मौजूद चीजों को देखा जाए। ये रब पे रहने दीजिए कि रब आपको पहले कश्फ अता करता है और आप कश्फ के जरिए देखते हैं, या रब वैसे ही दिखा देता है इसलिए कि वह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो आपकी आंखों के हिजाब हटा दे और बगैर किसी चीज के आप देखने लगे, और वो कादिर है। तो रब से ख्वाहिश कीजिए, लेकिन ये ख्वाहिश उस वक्त पैदा होती है सही मानों में जब इंसान अपने रब से इश्क करने लगता है। इनका पांचवा सवाल, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड द गैलेक्सी इज ऑलमोस्ट द सेम विद majority of the space being empty. This empty space in an atom is named by the scientist as Higgs boson, therefore claiming that subatom particles would get this their mass from Higgs boson. Is this the theory? Is true, what does the empty space in universe comprise of? Are the seven skies above all this, within this system or in another dimension? मैंने सवाल पढ़ने से पहले इसलिए घड़ी देखी थी कि इतना टाइम है. ये एक सवाल आपका मुझ पर कर्ज रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सबसे पहले इसी का जवाब दूंगा. अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, उसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा. एक लंबी थ्योरी है ये, इसमें असल में मैं मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि इसका जवाब मैं एटम की थ्योरी के जरिए से मुझे मुंतबिक उसे करना पड़ेगा. मुख्तलिफ जो आलम है कायनात में, जैसे हम आलम हैरत की बात करते हैं, लाहूत है, हाहूत है, माहूत है, ये तमाम जो आलम हैं, इनमें से दो आलम ऐसे हैं जहां सवाए अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा. ये उसके साथ, उस थ्योरी के साथ जाएंगे. इसके ऊपर बड़ी तफसील से इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी मैं बात करूंगा. मैंने रख लिया आपका सवाल, इसका तफसीली जवाब मैं बाद में अर्ज कर दूंगा. ये किसी साहब की एक सवाल है जिसके 5 हिस्से हैं. उनका पहला हिस्सा, या मुरीद एंड सूफी एग्जैक्टली द सेम, नो आर मुराद एंड सूफी एग्जैक्टली द सेम और आर दे एनी सब डिफरेंस बिटवीन देम. बात यह है कि इंसान सूफी के मकाम पर पहुंचता कैसे है, एक बुनियादी इसके अंदर अगर ये चीज हम नुक्ता समझ जाएंगे तो ये मुराद और सूफी, इन दोनों, ये दोनों चीजें हमारे यहां क्लियर हो जाएंगी. जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान के हर फेल की इब्तदा सोच से होती है. पहले इंसान सोचता है किसी चीज के बारे में, फिर इरादा करता है और उसके बाद अमल कर गुजरता है. मुराद क्या है ये बहुत सीधी सीधी, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें सीधा सीधा, हर वो चीज जो मांगी जाए वो मुराद है. एक सूफी सूफी के मकाम पर कब पहुंचता है, जब वो रब ताला की कुर्बत का ख्वाहिशमंद होता है. और रब की कुर्बत हासिल करने का जनून उस पे सवार हो जाता है, तो वो फिर وہ راہ اختیار کرتا ہے جو رب کے قرب کی طرف لے جائے اسے. اگر وہ از خود اکیلا اس کو تلاش کرنے لگے تو اسے بہت زیادہ وقت شاید لگ جائے اس میں. تو وہ مرشد کی تلاش کرتا ہے, گائیڈ کی تلاش کرتا ہے, استاد کی تلاش کرتا ہے, جو اپنے علم کے ذریعے سے اس آدمی کا سائیکو انالیسس کرتا ہے کہ یہ بندہ روحانی طور پر کہاں ہے, اور اس روحانی طور پر جس مقام پر اس وقت ہے جب وہ میرے پاس آیا ہے تو کیا چیز ہے جو اسے آگے جانے سے روک رہی ہے. تو فرض کر لیجئے کہ اگر اللہ مجھے کہیں توفیق بخش دیتا, میں کسی نیک انسان کی صحبت میں جا کے بیٹھتا, تو وہ اگر میرا انالیسس کرتا تو پتہ لگتا کہ روحانی طور پر تو بگڑا ہوا شخص ہے بالکل ہی. تو اس کو, ان صاحب علم کو میرے اندر نظر آ جاتا کہ میں اول درجے کا کنجوس ہوں, اول درجے کا حریص ہوں, انا کا مارا ہوا ہوں, غصہ مجھے جینے نہیں دیتا, انتقام سے کبھی میں نے پرہیز کی نہیں. تو وہ پھر پہلے ان چیزوں کا علاج کرتے کہ میرے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں. اب وہ جب یہ چیزیں نکالتے تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو مجھے پڑھنے کو دیا جاتا کہ یہ پڑھو, دوسرا بہت طریقے سے بغیر کہے ہوئے میری تربیت کا عمل شروع ہو جاتا کہ میری اگر انا توڑنی ہے تو وہ لوگ جو معاشرتی طور پر بہت بلند مقام پر نہیں ہیں ان کے سامنے وہ میری صحیح بات کو بھی غلط ہی کہتے اور غلط بات پر ڈانٹتے, تو نتیجہ یہ ہوتا کہ میری انا بار 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 کچلی جاتی. تو رفتہ رفتہ انا میرے اندر سے نکل جاتی. میں اگر سست الوجود ہوتا تو بہانے بہانے سے بڑے پولائٹلی کہتے کہ سرفراز جی میرے مہمان بیٹھے, میں خود چلا جاتا, اب جا نہیں سکتا, ادھر جانا وہاں سے روٹی تو لے آنا. تو بار بار مجھے بھیجتے تو میری سستی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی, مجھے لوگوں کی خدمت کی عادت پڑ جاتی, سو اینڈ سو فورتھ. اب یہ مشقت میں سے مجھے گزارتے, پھر مجھے یہ کہا جاتا کہ تم فرض عبادات کے ساتھ ساتھ یہ نفلی عبادات بھی کیا کرو, تو مجھے وہ نفلی عبادات کی طرف لگا دیتے, ذکر اذکار کی طرف لگاتے. میں اس مشقت میں سے گزارا جا رہا ہوتا تو وہ فقر کا راستہ طے کر رہا ہوتا اور اس مقام پر میں فقیر کہلاتا. جب میں اضافی مشقتوں کو اٹھا رہا ہوتا اور اس مل میں سے گزر رہا ہوتا چکی کے دو پارٹوں میں سے, فقیر اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایکسٹرا مشقتیں کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ تربیت ہو جاتی میری اور روحانی کیفیات میری بہت اچھی ہو جاتی تو میرے مرشد مجھ پر سے وہ تمام مشقتیں ریموو کر دیتے, تو میں صوفی کے مقام پر آ گیا ہوتا. تو یہ صوفی کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے جو بیسک رول پلے کیا وہ میری اس خواہش نے کیا کہ مجھے رب کا قرب چاہیے, اور اس خواہش کو میں نے عملی جامہ پہنایا اپنے مرشد صاحب چن کے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کے حکم کے مطابق وہ مشقتیں اٹھا کے. تو مراد بھی یہ ہے کہ جو چیز مانگی جائے وہ مراد ہے, ये दोनों इस लिहाज से इकट्ठी होंगी, अगरचे मुख्तलिफ डायमेंशंस में, लेकिन मानवीय तौर पर एक बन जाएंगी वो। सॉरी आपके मैं फालतू ले गया 5 मिनट। इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।